अच्छा, आप सबका यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। आज का दिवस हम सब के लिए और विश्व भर के लिए अति महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ये गौर पूर्णिमा है। ठीक इसी तिथि पर 515 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस अति आकर्षक रूप में प्रकट हुए और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री गौर पूर्णिमा, ये दो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चैतन्य महाप्रभु की लीला और उनके संक्षेप में शिक्षाओं के बारे में थोड़ा बहुत सुने। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कहते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए वो युग युग में प्रकट होते हैं। कई साल पहले सत्ययुग में वही भगवान श्री हरि नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की और प्रहलाद के पिता असुर हिरण्यकश्यप का वध किया। श्री राम के रूप में भी वो प्रकट हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये आदर्श दिखलाया मनुष्य समाज में कि आदर्श मनुष्य कैसे होना चाहिए। अनेक लीलाएं किए, रावण का वध किया, धर्म की स्थापना की। और कलयुग के अंत में वो कल्कि का रूप धारण करने वाले हैं और सारे दुष्टों का नाश करने वाले हैं। कलयुग में पाप बढ़ता जाएगा और आखिर में अवस्था इतनी बुरी हो जाएगी कि भगवान को अवतार लेना ही होगा, जबकि अन्य अवतार भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन ये अवतार खास दुष्टों के विनाश के लिए आएंगे। अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी भर घूमेंगे और सारे दुष्टों को नाश कर देंगे और आने वाले सत्य युग की तैयारी करेंगे। भगवान श्री हरि त्रियुगी नाम के से जाने जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में प्रकट होते हैं। लेकिन कलयुग में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप में वो प्रकट होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, और वो भी हरेक कलयुग में नहीं। हजार चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। एक चतुर्युग अर्थात सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इस एक चक्र को एक चतुर्युग कहते हैं। जब ऐसे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे अर्थात एक दिवस समाप्त हो जाता है। उसके बाद में ब्रह्मा जी की रात्रि होती है जिसमें उनके 12 घंटे होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री हरि किसी एक रूप लेकर आते हैं। प्रभु रामचंद्र जी का रूप ब्रह्मा जी के एक दिवस में प्रकट होता है इस ब्रह्मांड में। हर एक अवतार ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार प्रकट होता है। कभी कभी भगवान श्री हरि, जो कि परम स्वतंत्र हैं, दो बार भी आया करते हैं। उनके ऊपर कौन से नियम लागू हो सकता है? तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आता है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान का ये असीम कृपालु रूप हमारे केवल 500 वर्ष पूर्व में प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्रपाशदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधजः। नव योगेंद्र महाराज निमि को उपदेश देते हैं कि हे राजन, कलयुग में भगवान श्री हरि एक बहुत सुंदर और अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं। उनका वर्ण श्याम वर्ण नहीं है जैसे कि वृंदावन में कृष्ण का होता है, बल्कि अकृष्ण वर्ण है जो काला नहीं है, अर्थात स्वर्ण रंग। और वो अकेले नहीं आते हैं, अपने पार्षदों के संग, अपने भक्तों के संग आते हैं और अन्य नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। और उनका क्या काम क्या होता है? हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। और इस तरह से ये जो भगवान का रूप है ये बड़ा गुह्य है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इस रूप की आराधना करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसः, जो सुमेध हैं, जिनकी बुद्धि बहुत शुद्ध है, वो इस भगवान के रूप को पहचानेंगे और इस अवतार की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, आजानुलंबित भुजौ कनक अवतारौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। वो कहते हैं इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं, कृष्ण और बलराम। उनका वर्णन क्या है, कैसे दिखते हैं? उनकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, घुटनों तक पहुंचती हैं। उनके आंखें कमल के समान हैं, कमलायताक्षो संकीर्तनैक पितरो। उन्होंने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन किया है, और साथ साथ में विश्वम भरो सारे जगत के पालन करने वाले, पालन पोषण करने वाले हैं। साथ साथ में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, द्विजवरो ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ होंगे, युग धर्म पालो इस युग धर्म का पालन करेंगे, वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो ये करुणा के अवतार हैं। नरसिंह देव जब प्रकट हुए उन्होंने भी करुणा प्रकट की, लेकिन एक अलग तरीके से, हिरण्यकश्यप का शरीर नष्ट करके। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट होंगे तो किसी का शरीर नहीं नष्ट करेंगे, किसी राक्षसों का वध नहीं करेंगे, बल्कि हम सबके हृदय में जो राक्षस विराजमान हैं, उनका वध करेंगे भगवत प्रेम की भेंट सभी को देकर। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौरोदये पुष्पवंतौ चित्रौषधौ तमोनुधौ। ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा और सूर्य के समान गौड़ देश पर का उनका उदय हुआ है, और इस कलयुग का अंधकार नष्ट करने के लिए इन्होंने ये दो सुंदर रूप धारण किए हैं, तो मैं उनके चरण कमलों में वंदन करता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं, मा शुचः। भगवान ने कृपा तो की अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन के माध्यम से हम सब के ऊपर हमें दिव्य ज्ञान देकर, लेकिन फिर भी भगवान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन शर्त रखा हमारे सामने, और वो शर्त क्या था? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ हे अर्जुन, सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आओ। ये बहुत कठिन है, खास करके कलयुग में कितने लोग पूरी तरह से भगवान के शरण में जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो शर्त रखे वो शायद सभी को पालन करना इस कलयुग में कठिन हो, इसलिए कृष्ण भगवान सोच रहे थे कि कलयुग में ये काम नहीं चलेगा, इसलिए मुझे और एक बहुत ही कृपालु रूप धारण करना होगा। और फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। रूप गोस्वामी ने कहा है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। ये अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, अवतार नहीं है, अवतारी हैं। अवतार और अवतारी में अंतर ये होता है कि अवतारी सारे अवतारों के उगम स्थान होते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, और जो भी अवतार हैं वो सारे भगवान के या तो अंश हैं या उनके कला हैं। कला मतलब अंश के अंश, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो अवतार नहीं है, अवतारी हैं। फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर गोविंद जब इस भू धरातल पर प्रकट होते हैं, तो उन्हें भी अवतार इसलिए कहा जाता है कि वो इस संसार में उतर के आए हैं, अपने धाम से इस धरातल पर आए हैं, इस दृष्टि से उन्हें अवतार कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो है अवतारी। तो ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं, और इतने कृपाल रूप महावदान्याय, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई शर्त हमारे सामने नहीं रखी, मेरे शरण में आओ ऐसे कभी नहीं कहा। उन्होंने केवल कृष्ण प्रेम मुफ्त में हर जगह बांट दिया, पात्र अपात्रता न देखते हुए पापी लोगों को, दुष्ट लोगों को, दुराचारी लोगों को, सज्जन लोगों को, पुण्यवान लोगों को, सभी को कृष्ण प्रेम के लहरों में डुबा दिया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये अति कृपालु रूप जो है, इनके चरणों में हम वंदन करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे भेंट सारे संसार को दिया है जो कि पहले कभी किसी भी अवतार ने नहीं दिया है। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, और इसके लिए शास्त्र में प्रमाण है, उनमें से एक दो श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किए, लेकिन फिर भी अगर हमें किसी को भगवान स्वीकार करना है तो शास्त्र बताते हैं कि चार जो शर्त हैं वो पूरे होने चाहिए। पहली बात यह है कि उनका वर्णन या उनकी भविष्यवाणी शास्त्रों में होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने भविष्य विश्व रूप दिखाना यह आवश्यक होता है। चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को अपना विश्व रूप दिखाया था, और यह सिद्ध कर दिखाया था कि वो साक्षात श्री हरि हैं। तीसरा शर्त यह है कि उनको बहुत अद्भुत कार्य करने चाहिए जिससे कि पता चले कि ये भगवान है। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर 7 दिन और 7 रात लगातार धारण किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे कई अद्भुत चीजें प्रकट किए, और आखिर में उनके कर कमलों में और उनके चरण कमलों में ऐसे अद्भुत निशानियां होनी चाहिए जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनको देखकर हमें पता चले कि ये भगवान है। जैसे कि ध्वज, चक्र, शंख, अंकुश इत्यादि। वही चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त मुरारी गुप्ता के सामने वरह देव का रूप धारण किया। एक क्षण के लिए उनके सामने ये रूप जब प्रकट हुआ तो मुरारी गुप्ता चकाचौंध रह गए। वो तो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात हरि है, लेकिन फिर भी हम सब के लिए ये सिद्ध करने के लिए महाप्रभु ने ये रूप स्वीकार किया। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने यह बहुत ही विचित्र और सुंदर रूप प्रकट किया जिसको षडभुज रूप कहते हैं। षडभुज रूप में भगवान के 3 अवतारों का मिलन है, आप पहचान पाएंगे। 2 भुजाओं में, 2 हाथों में उन्होंने बांसुरी वो बजा रहे हैं, और वो श्री कृष्ण का रूप है। 2 हाथ, 1 धनुष बाण, धनुष बाण धारण किए हुए प्रभु रामचंद्र हैं, और फिर एक हाथ में कमंडलू, दूसरे हाथ में सन्यास डंडा, ये चैतन्य महाप्रभु का रूप है। तो ये तीन भगवान के बड़े सुंदर रूप, श्री कृष्ण, श्री राम और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों रूप जो हैं, एक ही रूप में, षडभुज रूप में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए। और ये है आदि पुरुष गोविंद श्री कृष्ण, जो कि दिव्य आनंद के सागर हैं। श्री कृष्ण को रसो वै सह कहा गया है, रसराज, वे दिव्य रसों के भंडार हैं। वो एक साधारण जीव की तरह नहीं है जो कि इस भौतिक प्रकृति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में भौतिक प्रकृति हमारी नहीं है, इस पे भोग करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के स्वामी हैं, इसलिए पूरी तरह से उनको भोग करने का अधिकार है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत का कभी भोग नहीं करते हैं, वो केवल आध्यात्मिक जगत में अपनी अंतरंगा शक्ति का भोग करते हैं और अपने आप को विस्तार करके वो अपने अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हुए भक्तों के संग में लीला करते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हुई उनके निकट के भक्त गोपियां। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध है वो इस संसार का संबंध नहीं है, ये अलौकिक है, ये पूरी तरह से शुद्ध और आध्यात्मिक है। और केवल वो व्यक्ति जिसके हृदय में बिल्कुल काम वासना नहीं है, वही व्यक्ति वास्तव में श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध है, जो लीला है, उसको समझ पाएगा। ये लादिनी शक्ति या भगवान के अंतरंगा दिव्य शक्ति का प्रदर्शन है। भगवान के विस्तारित रूपों में से सबसे प्रमुख प्रधान है श्रीमती राधा रानी। वैसे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान ही है, लेकिन एक भक्त के रूप में। भगवान अपने लादिनी शक्ति, अपने दिव्य आनंद की शक्ति विस्तारित करते हैं और उसकी मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा जी हैं। तो दोनों राधा और कृष्ण का संबंध ये लादिनी शक्ति या शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति का आदान प्रदान का है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानावपि पुरा भूव देह देह भेदं गतौतौ। शास्त्र में बताया जाता है कि राधा और कृष्ण ये है भक्ति का आदान प्रदान, और कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल शुद्ध स्तर में। और श्रीमती राधा रानी जो है वो भक्ति की सागर है, मूर्तिमान भक्ति की स्वरूपिणी है, और श्रीमती राधा रानी से अनंत कोटि लक्ष्मी इत्यादि उत्पन्न होते हैं। श्रीमती राधा रानी जैसे भक्त इस सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और आध्यात्मिक जगतों में ना तो थी, ना है और ना कभी हो सकती हैं, क्योंकि वही भक्ति के सागर हैं। उनकी कृपा के बिना श्री कृष्ण की भक्ति हमें नहीं मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा चिंतन करते हैं कि मेरे अंदर कौन से गुण हैं कि श्रीमती राधा रानी को इतने प्रेम की अनुभूति होती है। और श्री कृष्ण ये भी सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी को कितना आनंद आता है मेरी सेवा करने में, और ये भी सोचते हैं कि क्या कारण है कि श्रीमती राधा रानी मेरी इतनी तीव्रता से, इतनी शुद्धता से सेवा करती हैं। इसलिए इस बात को समझने के लिए राधा और कृष्ण फिर से इनका मिलन हो जाता है। वैसे देखा जाए तो राधा कृष्ण एक हैं, कृष्ण एक हैं, लेकिन भिन्न हुए हैं राधा और कृष्ण के रूप में। और फिर जब श्री कृष्ण राधा जी के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं तो दोनों का मिलन फिर से हो जाता है, और उस मिलित रूप को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, ये चैतन्य चरितामृत में प्रमाण आता है। हम यहां देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त गणों के संग कीर्तन कर रहे हैं और ऊपर दिखाई पड़ रहा है श्री कृष्ण गोपियों के संग में लीला करते हैं। तो राधा कृष्ण मतलब भक्ति रस का आदान प्रदान, और चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति रस के आदान प्रदान के परिपूर्णता के रूप हैं, उसके मूर्तिमान स्वरूप हैं। चैतन्य महाप्रभु वही श्री कृष्ण हैं जो कि श्रीमती राधा रानी के रूप में आए हैं। जब श्रीमती राधा रानी समझ लेती हैं कि श्री कृष्ण इस धरातल पर इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट होना चाहते हैं और मेरी भक्ति का आस्वादन करना चाहते हैं, तो वो अपने शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा देते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु का बड़ा सुंदर और अद्भुत रूप प्रकट हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के भक्त थे जिनका नाम था रामानंद राय, और बहुत सुंदर संवाद दोनों के बीच में हुआ है जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। इस संवाद के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने अपना दिव्य रूप दिखाया और रामानंद राय के सामने ये सिद्ध किया कि वास्तव में वो राधा कृष्ण से अन्य नहीं है, वही कृष्ण है जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा जी के भाव को उनके कांति को स्वीकार करके वही श्री हरि आए हैं इस विशेष भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में इसलिए आए हैं हम सब पतित जीवों को बतलाने के लिए कि जीवन का ध्येय उद्देश्य क्या है। इस चित्र में हम देख रहे हैं संसार का चक्र, 84 लाख योनियां हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, और जो जीव भगवान को भूल जाता है इस भौतिक ब्रह्मांड में इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहता है। अनादिकाल से ये संसार का चक्र चलते आ रहा है, कभी पक्षी के योनि में, कभी पशु योनि में, कभी मनुष्य योनि में, कभी देवताओं के योनि में, कभी कीड़े मकोड़े के योनि में, कभी पेड़ पौधे के योनि में, ऐसे 84 लाख योनियों में अनादिकाल से जीव भ्रमण करते आया है। और जब तक कि जीव भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाएगा तब तक ये संसार का चक्र चलता रहेगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कलयुग में बहुत कम लोगों को भक्ति मार्ग के प्रति रुचि है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जीव हैं, वो अनंत काल तक यूं ही इस संसार चक्र में घूमते रहेंगे। लेकिन इस संसार के भयंकर विषमय चक्र से मुक्त करने के लिए भगवान ने ये चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है, और इस रूप में आकर हम सबका मन मोहित कर लेते हैं, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दे देते हैं। हरि शब्द का अर्थ होता है सर्व अमंगल हरे, जो अमंगल चीजों का हरण करते हैं, और अमंगल चीजों का हरण जब हो जाता है तो हमारा हृदय भगवत प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। सर्व प्रेम दिया मन हरे, हमारा मन हरण करके शुद्ध प्रेम प्रदान कर देते हैं, ये है भगवान श्री कृष्ण। अध्यापक के रूप में आते हैं और हम सबको सिखाते हैं कि किस तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं अ आ ई ये लिखना, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखलाते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु केवल एक साधारण या असाधारण भक्त हैं। हमें जान लेना चाहिए कि वास्तव में ये साक्षात हरि श्री कृष्ण हैं, केवल हमारे लिए एक भक्त की का वेश पहनकर आए हैं। तो हम सब इस संसार में छोटे बच्चों की तरह हैं। हमें श्री कृष्ण का नाम निस्सहाय भाव से, भक्ति भाव से पुकारना चाहिए, तब भगवान हमारी पुकार सुनेंगे। तो ठीक इसी तरह से भगवान के भक्त अद्वैत आचार्य ने 500 वर्ष से भी अधिक पूर्व तीव्रता से भगवान की कृपा की याचना की थी। उन्होंने तुलसी जल, तुलसी पत्ते और गंगा जल भगवान के शालिग्राम शिला को अर्पण करके वो जोर जोर से प्रार्थना करते थे, भगवान को पुकारते थे कि हे कृष्ण, अभी समय इतना बिगड़ गया है, लोग इतने पापी हो गए हैं, कितनी बुरी अवस्था है सारे संसार में, मुझे तो कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। अभी उद्धार अगर इन लोगों का होना है, इसके लिए केवल एक ही उपाय है, और वो है कि आप ही को यहाँ प्रकट होना होगा। अगर स्वयं आप यहाँ पर प्रकट नहीं होंगे तो यहाँ के पति जीवों के लिए और कोई भी मार्ग नहीं रहेगा। इसलिए अद्वैत आचार्य इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे, और भगवान भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों के वचनों से बद्ध हो जाते हैं। अगर कोई भक्त वचन देता है तो भगवान को ये वचन पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए नवद्वीप में मायापुर गांव में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, ठीक 515 वर्ष पूर्व फाल्गुन महीने के पूर्णिमा में। उस समय चंद्र ग्रहण था, और जैसे कि चंद्र ग्रहण में होता है, जगह जगह से लोग आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और हरि बोल कैसे ध्वनि करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। तो ठीक इसी तरह से उस दिन भी ऐसे ही हुआ, और भगवान प्रकट हुए हरि के नामों के उच्चारण के बीच में। यह वो निवास स्थान है जिसमें जगन्नाथ मिश्र और सची माता निवास करती थीं मायापुर में, नवद्वीप में। और इस वृक्ष के नीचे ही एक घर में, एक कुटिया में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उस समय सची माता के पिता, जिनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि बड़े ज्योतिष थे, विद्वान थे, उन्होंने पंचांग देकर, जातक देखकर ये भविष्यवाणी की कि ये बच्चा साधारण नहीं है, ये आगे चलकर सारे संसार का उद्धार करेगा, इसलिए इसका नाम होना चाहिए विश्वंभर। बहुत ही जल्दी ये बच्चा सारे मोहल्ले के लोगों का प्रिय बन गया, और हमेशा बचपन से ही लोगों को हरी हरी कहने के लिए प्रेरित करता। कई बार जब वो रो पड़ता तो सारे माहौल के, पड़ोस के जो लोग थे, खास करके जो महिलाएं थीं, वो वहां आती थीं और ताली बजाकर हरी हरी कहती और हरी का कीर्तन करती। तो जैसे ही वो कीर्तन की ध्वनि सुनते, तुरंत उनका रोना बंद हो जाता था। इस तरह से बड़े चतुराई से अपने प्रकट होने के तुरंत ही उन्होंने लोगों के मुख से हरि का नाम निकलवाया, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का जीवन बहुत ही जल्दी आरंभ हो गया। एक बार जब उनकी माता सची माता ने निमाय को मिठाइयां दी थी खाने के लिए, तो निमाय ने थोड़ी बहुत मिठाइयां तो खा ली, लेकिन पास में जो मिट्टी थी वो भी खाने लगे। तो जब मां को पता चला तो डांटने आई कि अरे निमाय, क्या मिठाइयों की कोई कमी है कि तुम मिट्टी खा रहे हो? सभी को ऐसी लीलाएं देखकर श्री कृष्ण की याद आई, क्योंकि श्री कृष्ण भी इसी तरह से लीलाएं किया करते थे वृंदावन में। तो हालांकि निमाय इतने छोटे थे, फिर भी उन्होंने जवाब दिया, कहने लगे, अरे मां, ये जो मिट्टी है और ये मिठाई है, दोनों में अंतर क्या है? ये मिठाई भी तो मिट्टी का ही एक परिवर्तित रूप है, तो अगर मैं मिट्टी खाऊं या मैं मिठाई खाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? तो सची देवी, वो भी ब्राह्मणी थी, वो भी शास्त्र को जानती थी, तो पहले तो आश्चर्यचकित हो गई कि निमाय ने ये दर्शन शास्त्र कहां से सीख लिया, और ये भी उल्टा दर्शन शास्त्र। तो कहने लगी, अरे निमाय, तुम जो कह रहे हो वो सही है कि मिठाई भी मिट्टी का ही परिवर्तित रूप है, लेकिन रूप के आधार पर इनके अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मिट्टी से एक मटका बना जाता है और ईंट भी बना जाता है, लेकिन ईंट का प्रयोग पानी भरने के लिए नहीं कर सकते, और पानी के मटके का प्रयोग एक मकान को बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से, हालांकि ये मिट्टी का ही, भूमि का ही परिवर्तित रूप है, मिठाई ये खाने योग्य है और ये जो मिट्टी है ये खाने योग्य नहीं है। तो ऐसे दर्शन शास्त्र सुनकर निमाई बड़े संतुष्ट हुए और कहने लगे, ठीक है, आज से मैं मिठाई खाऊंगा और मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। तो जैसे जैसे निमाई बड़े हो गए तो शरारती बन गए और हमेशा गंगा जी के तट पर जाते थे और लोगों को छेड़छाड़ किया करते थे, खास करके वहां जो ब्राह्मण थे और वहां की जो नव युवतियां थीं, जो दुर्गा देवी, शिव जी इत्यादि इनकी पूजा करने आती तो उनको छेड़छाड़ करते। जब ये नव युवतियां आकर दुर्गा जी के लिए, शिव जी के लिए भोग चढ़ाते, उनके लिए चंदन रखते या फूलों की माला रखते, तो अचानक निमाय बीच में से आकर वो सारे मिठाइयां जो भोग है वो खा लेते और जो फूल माला है वो अपने गले में पहन लेते और चंदन का लेप भी अपने ही शरीर पर कर देते। ऐसे सुनकर, ऐसे देखकर सारे नवयुवतियां जो बालिकाएं हैं वो बड़े दुखी हो जाती थी और कहती थी कि अरे निमाय तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करना उचित नहीं है। और फिर निमाय जवाब देते, अरे तुम नहीं जानते कि दुर्गा देवी, गंगा देवी ये सब मेरे दासी हैं और इनकी बात तो दूर है, साक्षात भगवान शंकर भी मेरे किंकर हैं। तो सारे बालिकाएं कहती कि अरे क्या कह रहे हो, तुम ऐसे अपराध करोगे तो तुम्हें देवी देवता जो है वो शाप देंगे। निमाय कहते, नहीं, मैं ही उनका स्वामी हूं। और ब्राह्मणों को भी अलग अलग तरह से वो तंग करते। ब्राह्मण और ये बालिकाएं दोनों आकर जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पास आकर शिकायत करते, लेकिन उनके हृदय में कोई क्रोध नहीं रहता, केवल बाहरी रूप से आकर क्रोध व्यक्त करते सची माता और जगन्नाथ मिश्र के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े दिव्य आनंद की अनुभूति करते। जिस तरह से जब गोपियां और गोपगण वृंदावन में माता यशोदा और नंद महाराज के पास में जाते थे श्री कृष्ण के हरकतों के बारे में शिकायत करने के लिए, अंदर ही अंदर उनको दिव्य आनंद होता था। तो इस तरह से निमाय बड़े होते गए और एक बड़े विद्वान बने। विद्वान बने, कई सालों तक उन्हें अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन किया, सारे बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया, जगह जगह जाकर वाद विवाद करते और सारे विद्वान उनके सामने आने के लिए घबरा जाते, क्योंकि उनको पता था कि सारे पृथ्वी पर निमाय पंडित जैसा कोई विद्वान नहीं है। फिर ऐसा हुआ कई साल बाद में कि जब उनके पिता के श्राद्ध के लिए वो गया चले गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात दूसरी बार ईश्वरपुरी से हुई। ईश्वरपुरी एक वैष्णव सन्यासी थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त थे, बड़े कृपालु थे, सारे वैष्णव के सद्गुण उनके अंदर थे। तो निमाय पंडित इतने प्रभावित हुए ईश्वरपुरी के संग से कि उनके स्वभाव में एक ऐसा भयंकर परिवर्तन हो गया, सारे व्याकरण शास्त्र को उन्होंने त्याग दिया, सारे न्याय शास्त्र को त्याग दिया और केवल कृष्ण के नाम का उच्चारण करने लगे। और जब वो लौट कर आए तो नवद्वीप के निवासी आश्चर्यचकित रह गए कि इतना परिवर्तन निमाय पंडित में। पहले इतना शुष्क व्याकरण का अध्यापक था और आज केवल कृष्ण कृष्ण कहकर जगह जगह घूम रहा है, नाम संकीर्तन कर रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और जो नवद्वीप में वैष्णव थे उनके तो आनंद की सीमा नहीं रही। वो तो सोच रहे थे कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी असीम कृपा है कि निमाय पंडित जैसा बुद्धिमान, सुंदर व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति आज कृष्ण भक्त बन गया है। जब निमाय पंडित भक्त बन जाएगा तो ये इतना शक्तिशाली है कि सारे विश्व भर को कृष्ण भक्त बनाएगा, इसके अंदर ये अद्भुत तेज और शक्ति है। तो इस तरह से निमाय पंडित नवद्वीप में आकर उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चालू किया, हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन, जो कि नवद्वीप में एक क्रांति जिसने पैदा कर लिया। और केवल नवद्वीप नहीं, आगे चल के बंगाल में, सारे पूर्व भारत में, और धीरे धीरे जैसे वर्ष आगे गए हैं हम देख रहे हैं कि सारे विश्व भर में ये क्रांति फैल रही है, हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन। भगवान श्री कृष्ण इसी तरह से हरिनाम का संकीर्तन करते जाया करते थे, जगह जगह नवद्वीप में, गांव में, और हमेशा बोला करते थे जीव जागो जीव जागो गौराचंद्र बोले कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस तरह से निमाय पंडित अपने भक्तों के साथ में जगह जगह गांव गांव गली गली में जाते थे, हर एक व्यक्ति से निवेदन करते थे, जीव जागो, तुम अभी माया के गोदी में सोए हुए हो, निद्रा से जाग कर कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, कृष्ण ही तुम्हारे माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है, कृष्ण ही सब कुछ है, श्री कृष्ण का शरण ले लो, उनका नाम का जप और कीर्तन करो। इस तरह से उन्होंने कई लोगों का उद्धार किया, हजारों हजारों की संख्या में लोग कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए और कई बड़े बड़े पापी लोगों का उद्धार भी हुआ, जैसे कि जगई और मधाई। ये जगाई और मधाई बड़े पतित लोग थे, बड़े क्रूर। उनका जन्म तो हुआ था ब्राह्मणों के परिवार में, लेकिन बड़े पापी व्यक्ति थे। पूरे दिन भर शराब पीकर उन्मत्त रहते थे। ऐसे कोई भी कार्य नहीं था जो कि उन्होंने नहीं किया था। बलात्कार करते, चोरी करते, डकैती करते, खून करते, दिन भर लाल लाल आंखों से घूमते रहते। नवद्वीप में नाक में दम हो गया था। इस तरह से ये जगाई और मधाई का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भेजा। और सुंदर लीला है, जगाई और मधाई को आखिर उन्होंने भक्त बना दिया। जगाई मधाई को बहुत पश्चाताप हुआ कि हम कितने पापी थे, और वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए और कृष्ण भक्त बने। और इस ये कथा जब फैल गई सारे नवद्वीप में तो लोग आश्चर्यचकित रह गए और निमाय पंडित के विशेष प्रभाव का गुणगान करने लगे कि जगाई और मधाई जैसे पतित लोगों का उद्धार हुआ है, ऐसे पापी लोग भी कृष्ण भक्त बने हैं, ये कितनी अद्भुत और सुंदर बात है। उस गांव में एक काजी रहा करते थे जिनका नाम था चांद काजी। और जब उन्होंने देखा कि ये हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन बढ़ते जा रहा है, और वहां के लोगों ने, मुसलमान लोगों ने आकर कहा कि ये तो हरिनाम संकीर्तन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको इसे रोकना चाहिए, तो उस चांद काजी ने ये संकीर्तन आंदोलन रोकने का आदेश दिया। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा, डरो नहीं। चांद काजी ने सबको धमकी दी थी कि किसी के अगर ये किसी का साहस हुआ कि फिर से ये हरिनाम का संकीर्तन करें तो मैं मेरी सेना लेकर आऊंगा, और इतना ही नहीं सबको दंड दूंगा और सभी के ऊपर जल छिड़क कर उनको मुसलमान बना दूंगा। क्योंकि उस जमाने में हिंदू से मुसलमान बनना बहुत आसान था, केवल अगर किसी मुसलमान ने पानी छिड़क दिया तो व्यक्ति मुसलमान माना जाता था। इसलिए हजारों की संख्या में लोग मुसलमान बन गए थे। तो जब भक्तों ने सुना चांद काजी की धमकी तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, डरो नहीं, आज हम ऐसा जबरदस्त संकीर्तन करेंगे कि काजी को अपनी कई जन्मों की नानियां याद आ जाएंगी। तो इस तरह से वो संकीर्तन लेकर आए। जब आए तो चांद काजी मृदंग और करतालों की ध्वनि सुनकर ऊपर अपने कमरे में छुप गए। और जब महाप्रभु ने संदेश भेजा कि काजी को नीचे बुलाया जाए तो काजी डर के मारे आए और कहने लगे कि मैंने जब सुना कि आप ऐसे बड़े संख्या में लोग आए हैं तो मैं डर गया और मैं ऊपर छुप गया था, लेकिन जब मैंने अभी देखा है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो ये निमाई, तो मैं यहां पर आया हूं। तो वहां आकर सर झुककर वहां निमाई के सामने आए और कहने लगे, अरे निमाई, तुम्हारे दादा नीलांबर चक्रवर्ती, वो तो मेरे मामा के समान है, इसलिए तुम मेरे भांजे लगते हो, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसे संबंध में कभी कभी मामा भांजे के ऊपर गुस्सा हो जाता है, कभी भांजा मामा के ऊपर गुस्सा हो जाता है, तो ऐसे व्यवहार में कोई बुराई नहीं है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो निमाय पंडित ने प्रेम से आलिंगन किया और उनके बीच में वार्तालाप हुआ। है ये लीला बहुत सुंदर, लंबी लीला है। उनका जो संवाद हुआ उसे सुनने के लिए आज समय नहीं है, और कहीं इस लीला का वर्णन करेंगे, शायद आज के नाटक में यही लीला होगी, तो हम और चांद काजी के बारे में देखेंगे। आखिर में चांद काजी के साथ में संवाद हुआ और चांद काजी भी शुद्ध भक्त बन गए। कृष्ण कृष्ण हरि हरि का नाम का उच्चारण करने लगे और उन्होंने ये वायदा किया कि हरि नाम संकीर्तन मैं कभी नहीं रोकूंगा, और मेरे बात ही नहीं, मेरे पीढ़ियां जितने भी आएंगी मैं उन सब के लिए ये आदेश देता हूं कि वो कभी भी हरिनाम संकीर्तन को रोकेंगे नहीं। और इसलिए चांद काजी की समाधि एक तीर्थ स्थान है, क्योंकि चांद काजी भी एक शुद्ध भक्त बन गए थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग तरह की लीलाएं करी, और उस समय आया कि उन्होंने सोचा अब गृहस्थ आश्रम को त्याग कर मुझे सन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। 24 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास आश्रम स्वीकारने की ठान ली। उस समय उनके सारे भक्त दुख के मारे प्राय प्राण को त्यागने के लिए तैयार थे। उनको ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि उनके प्रिय विश्वंभर निमाय पंडित आज संसार को त्यागने वाले हैं और उनके सुंदर घुंघराले काले बालों को त्याग करने वाले हैं और अपना सर मुंडवाने वाले हैं। काटवा नाम के शहर में बंगाल में ये लीला हुई और वहां पर चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के विरोध में हजारों की संख्या में लोग आए और केशव भारती नाम के सन्यासी जिनके पास निमाय पंडित सन्यास लेने के लिए आए थे उनसे कहने लगे, अगर आपने निमाय को सन्यास दिया तो हम आपके आश्रम को जला डालेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आप नहीं सन्यास दे सकते हैं निमाय को। तो किसी न किसी तरह से निमाय ने उन सब भक्तों को सांत्वना दी, उनको शांत कर दिया और फिर निमाय ने सन्यास लिया। सन्यास लेने के बाद में उन्होंने अपने माता सची देवी से वायदा किया कि मैं आपके बहुत पास में रहूंगा, मैं यहां जगन्नाथपुरी में जाऊंगा जहां की श्री जगन्नाथ जी विराजे हैं और वहीं पर रहकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया करूंगा और हरि नाम का संकीर्तन करूंगा और जब भी तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास में आऊंगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहां रहे। एक बार ऐसे हुआ कि जब जगन्नाथ जी का दर्शन करके भाव विभोर होकर प्रेमावेश में वो नीचे गिर पड़े, बेहोश हो गए थे, तो वहां के राजा प्रताप रुद्र के मंत्री जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि बड़े विद्वान थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस अवस्था में देखा और सोचने लगे कि मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। उनको उठाकर अपने घर में ले गए और उनकी अच्छी तरह से सेवा की और अपने मन ही मन में सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे थे कि ये निमाय पंडित इतने नौजवान हैं, केवल 24 साल के हैं, इतना सुंदर रूप, इतना प्रभाव, इतनी विद्वत्ता, इतनी शक्ति, मुझे संशय हो रहा है कि ये श्री कृष्ण चैतन्य क्या अपने संन्यास के व्रत का पालन कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे वेदांत का उपदेश ये श्री कृष्ण चैतन्य को देना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु तो बड़े नम्र थे, वैष्णव बनकर आए थे और वैष्णव का गुण रहता है कि वो हमेशा नम्र रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जैसे आपकी इच्छा, आप तो मेरे पिता समान हैं, आप बड़े विद्वान हैं और मैं तो एक तुच्छ जीव हूं, तो मैं आपसे सुनने का इच्छुक हूं। तो लगातार सुबह से शाम 7 दिन के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेदांत के ऊपर भाषण किया। 7 दिन लगातार चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द नहीं कहा, केवल सुनते गए सुनते गए। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ और वो कहने लगे कि स्वामी जी, आप 7 दिन लगातार मेरा उपदेश सुनते आए हैं लेकिन आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या आपने मेरे भाषण को समझ लिया है, मैं जो वेदांत की टीका कर रहा हूं, टिप्पणी कर रहा हूं, क्या आप समझ पाए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं वेदांत तो अच्छी तरह से समझता हूं लेकिन आपके भाष्य को बिल्कुल नहीं समझ पाया, क्योंकि आपने इतना तोड़ मरोड़ कर ये वेदांत को प्रस्तुत किया है कि वेदांत नहीं कुछ और ही बन गया है। और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक ऐसा सुंदर संवाद हुआ और इस संवाद के बाद में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर हुई और वो भी भक्त बन गए और नाना प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। यहां हम देख रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में निमंत्रण करके उनको प्रसाद खिला रहे हैं। इस तरह से महाप्रभु के प्रभाव से जगह जगह लोग भक्त बन गए। जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बने तो सब जगह आश्चर्यचकित लोग हो गए कि सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे विद्वान व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए। और जो हर साल वहां रथ यात्रा का महोत्सव हुआ करता था तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में वहां जाकर कीर्तन किया करते थे और हजारों की संख्या में लोग जो आते थे वो सब प्रेमावेश में होकर कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता था जिसके आंखों से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के अश्रु धारा नहीं होती थी। इस तरह से मृदंग, करताल और कृष्ण नाम की ध्वनि गूंजती रहती थी रथ यात्रा के समय। और रथ यात्रा के समय महाप्रभु ने ऐसे अन्य कई सुंदर लीलाएं किए। एक बार जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। जगन्नाथ जी की इच्छा थी कि मैं यहीं पर रथ के ऊपर सवार होकर बीच रास्ते में खड़े रहूं। महाराज प्रताप रुद्र जो वहां के राजा थे, उन्होंने हाथी बुलाए, घोड़े बुलाए, बड़े बड़े पहलवान बुलाए, लेकिन रथ हिले ही नहीं। और अंततः चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे राजन, सारे हाथियों के घोड़ों को हटाइएगा। रथ के पीछे गए और केवल अपने ललाट या कपाल का स्पर्श उस रथ से किया और तुरंत रथ आगे चल पड़ा। इस चमत्कार को देखकर महाराज प्रताप रुद्र बड़े प्रभावित हुए और सारे लोग जय जयकार करने लगे और समझ गए कि वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वास्तव में वो श्री भगवान श्री कृष्ण ही हैं। महाराज प्रताप रुद्र बड़े अच्छे वैष्णव थे, बड़े नम्र थे। हालांकि इतने धनी थे, इतने शक्तिशाली थे, फिर भी जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती थी तो जगन्नाथ जी के सामने वो झाड़ू लेकर रास्ता साफ करते थे। ये प्रथा अनादिकाल से चलती आई है और आज भी इसी तरह से महाराज प्रताप रुद्र के जो वंशज हैं, जो उड़ीसा के नीलाचल के राजा हैं, वो भी आकर जगन्नाथ जी के सामने रास्ता साफ करते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमेशा प्रताप रुद्र से दूर ही रहते थे और कहते थे कि वो तो राजा हैं और मैं तो सन्यासी हूं, सन्यासियों को राजाओं का संग करने से क्या मतलब है। लेकिन नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों ने एक तरकीब सोची महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा बरसाने के लिए। उन्होंने कहा कि रथयात्रा के बीच में जब चैतन्य महाप्रभु वहां उद्यान में जाकर विश्राम करेंगे, उस समय एक योगी या वैरागी का वेश पहनकर आप जाना और उनकी सेवा करना, उनके चरणों की सेवा करना और सुंदर सुंदर कृष्ण के बारे में आप उनको लीलाएं सुनाना, श्लोकों का उच्चारण करना। तो महाराज प्रताप रुद्र ने ऐसे ही करना आरंभ किया। चैतन्य महाप्रभु बड़े थके हुए थे और आंखें बंद थी और वो सुनने लगे। महाराज प्रताप रुद्र ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के कई सुंदर सुंदर श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ किया गोपी गीत से। और चैतन्य महाप्रभु ने आखिर में ये एक श्लोक सुना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। इस श्लोक में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं इतने मधुर हैं, इतने सुंदर हैं, ये अमृत के समान है। तव कथामृतम, और जो व्यक्ति इस अमृत का पान करता है तप्त जीवनम, उसके सारे पीड़ाएं दुख नष्ट हो जाती हैं। कभी भी रीडितम, और सारे जो दार्शनिक हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, वो इस कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को सफल बना देते हैं। और ये सारे विश्व भर में कल्याण फैलाने वाला ये उपाय है। केवल सब जगह हमें श्री कृष्ण के लीलाओं को, कथाओं को फैलाना चाहिए, बोलना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह से कृष्ण कथा जगह जगह जाकर करता है, कृष्ण भक्ति को फैलाता है, वो बहुत ही उदार व्यक्ति है, भूरिदा जना। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक सुना, उनकी आंखें खुली, उठे और कहने लगे, बड़े आनंद से नृत्य करने लगे और महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन किया। भाव विभोर होकर प्रेमावेश में आकर वो महाराज को पहचान नहीं पाए। अगर पहचानते तो आलिंगन नहीं करते। पहचान ली उनको, आलिंगन करके कहने लगे, तुम तो भूरिदा भूरिदा, सबसे कल्याणकारी और उदार हृदय के व्यक्ति तुम हो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर कर ली। अपने भक्तों के संग में चैतन्य महाप्रभु कई प्रकार की लीलाएं करती थी। भक्तगण बीच बीच में कुंडों में जाते थे, सरोवर में जाते थे और जल क्रीड़ा करते थे। थे तो बड़े गंभीर और सौम्य सज्जन ब्राह्मण इत्यादि, लेकिन जब आपस में आते तो छोटे बच्चों की तरह वो क्रीड़ा करने लगते। कहीं अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु आपस में युद्ध करते, जल युद्ध, और फिर कब नित्यानंद प्रभु जब जीत जाते तो अद्वैत आचार्य उनको दो बुरे शब्द बोल के वहां से निकल पड़ते। और दूसरी जगह श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित के बीच में जल युद्ध चलता था, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कते। तो कहीं और रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में जल युद्ध चलता था। वास्तव में रामानंद राय विद्यानगर में एक गवर्नर थे, बड़े राष्ट्रपति के बराबर थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए वो वहां नीलाचल में आए थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े वरिष्ठ सज्जन, इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े विद्वान, तो चैतन्य महाप्रभु ये सब देख रहे थे और कहने लगे अपने भक्तों से, अरे देखो तो सही, ये रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े सज्जन, इतने बड़े गंभीर लोग, कहां गया इनका गांभीर्य, अभी छोटे बच्चे की तरह लीला कर रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके पार्षद ने जवाब दिया कि हे प्रभु, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने आपकी कृपा के सागर का एक बूंद का आस्वादन किया है, इसलिए कृष्ण भक्ति में ये पागल हो गए हैं, इसलिए इनके लिए समाज के क्या नियम लागू होते हैं। इस तरह से सुंदर सुंदर लीलाएं उनके भक्तों के संग में महाप्रभु किया करते थे। आगे चल के महाप्रभु वृंदावन की ओर गए और उन्होंने दो सज्जनों के ऊपर बड़ी कृपा की, जो कि नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे, जिनका नाम था दबीर खास और साकर मल्लिक, थे ब्राह्मण परिवार के, लेकिन मुसलमान राजा की सेवा में आकर उनका नाम बदल गया था, मुसलमान नाम हो गया था, लेकिन थे बड़े विद्वान, भागवत के पंडित थे। और चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों के ऊपर कृपा की और उनके नाम बाद में हुए श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो हम सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम सब रूपानुग कहलाते हैं, रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलने वाले। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते रहे और झारखंड में जब गए तो वहां के जंगल से गुजरते हुए जब वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे तो सारे पशुओं को भी पशुओं के माध्यम से उन्होंने नृत्य कराया। सारे पशु, शेर, बकरी, बंदर, शिगाल, सारे कीर्तन करते, नृत्य करने लगे। वैसे जो पशु शत्रु हुआ करते थे साधारण समय, वो सब आपस में आकर प्रेम से गले में गले लगाकर आलिंगन करके कृष्ण कीर्तन करने लगे। ये बड़ा अद्भुत दृश्य था। इस दृश्य को देखकर उनके साथ में जो उनके सेवक थे वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। इस तरह से धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आ पहुंचे। वाराणसी ये मायावादियों की राजधानी थी और आज भी है, क्योंकि वहां पर ऐसे कई सन्यासी और ब्राह्मण रहते हैं जो भगवान को निराकार समझते हैं। जब वहां महाप्रभु पहुंचे तो उन्होंने धुआंधार कीर्तन किया और हजारों की संख्या में लोगों ने ये हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया। ये देखकर वहां के जो मायावादी सन्यासी थे वो बड़े दुखी हुए, क्रोधित हुए, टीका करने लगे कि ये कैसे सन्यासी हैं, इनको तो हरिनाम संकीर्तन में ही रुचि है, नाच गान में रुचि है, जबकि सन्यासी को चाहिए कि वो सुनसान जगह में जाकर वेदांत का अध्ययन करे। तो किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात उन सन्यासियों से हुई। वो सन्यासी अंदर अपने जगह में बैठे थे और चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उस कमरे के बाहर जो पैर धोने के लिए स्थान हुआ करता था वहीं पर बैठ गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने नम्रता का प्रदर्शन कर रहे थे। सारे मायावादी सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु का तेज देखा और समझ गए कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मायावादी लोग भगवान के निराकार की उपासना करते हैं और ब्रह्म तेज से बहुत प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया और इतनी नम्रता देखकर जो मायावादी सन्यासियों के नेता थे, प्रकाश आनंद सरस्वती, वो इतने प्रभावित हो गए, उनका हृदय पिघल गया और तुरंत उनके पास आए और कहने लगे, गोस्वामी जी गोस्वामी जी, आप नीचे क्यों बैठे हैं? ये गंदा स्थान है, आइए, आप ही सन्यासी हैं, हमारे बीच में आकर आप बैठिए और आइए हम थोड़ी दो बातें करते हैं। इस तरह से दोनों के बीच में संवाद हुआ। इसका इस संवाद का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ में करते हैं। इस संवाद को सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उन मायावादी सन्यासियों को कृष्ण भक्त बना दिया। और आखिर में उनके नेता प्रकाश आनंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु के शरण लिए और कहने लगे कि आज से हम भी कृष्ण भक्त बनेंगे, हम सब जगह कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा दी है। इस तरह से बात सब जगह वाराणसी में फैल गई कि प्रकाश आनंद सरस्वती और अन्य सन्यासी गण भी कृष्ण भक्त बन गए और इस तरह से महाप्रभु अपने आंदोलन को बढ़ाते गए, वापस लौट गए और जगन्नाथपुरी आए और काशी मिश्र नाम के उनके भक्त के घर में रहा करते थे। ये है उनका निवास स्थान, जिस कमरे में महाप्रभु रहा करते थे। 18 साल इस छोटे से कमरे में रहे जिसका नाम है गंभीरा। और जगन्नाथपुरी में ऐसे कृष्ण प्रेम के लक्षण हमेशा प्रकट किया करते थे। वो और भी गहराई में कृष्ण भक्ति के, कृष्ण प्रेम के सागर में डूबते गए और अधिक से अधिक कृष्ण भक्ति के अष्ट सात्विक विकार जो लक्षण हैं वो प्रकट करने लगे। कई बार वो बीच बीच में बेहोश हो पड़ते थे, कभी कभी ऊपर नीचे बहुत जोर जोर से कृष्ण का नाम का उच्चारण करते थे और हर बार केवल वो कृष्ण को ढूंढते रहते थे। आंखों से अश्रु धारा होने लगती थी, शरीर कांपने लगता था और हर जगह जाकर कृष्ण को ढूंढते थे। यही वैष्णव के लक्षण होते हैं। वैष्णव कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैंने कृष्ण को पा लिया है, वो कहते हैं कि कहां है कृष्ण। तो जिस तरह से गोपियां कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में वृंदावन में हमेशा कृष्ण के लिए ढूंढा करती थी, यही बोलती थी कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे कृष्ण, ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी श्रीमती राधा रानी के भाव में, गोपियों के भाव में, कहां है कृष्ण, हां कृष्ण, हां कृष्ण कहकर इधर उधर घूमते फिरते थे। भावावेश होकर पेड़ों से पूछते थे, पत्थरों से पूछते थे, पक्षियों से पूछते थे, क्या तुम्हें देखा है कृष्ण, कहां है, कहां गए मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण। इस तरह से सारा दिन और सारी रात चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में मग्न रहते। इस चित्र में दाहिने ओर आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु हैं और बाईं ओर इस चित्र के आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में क्या चल रहा था। अपने मन ही अपने अंतःकरण में वो ये दृश्य देख रहे थे कि गोपियां अलग अलग तरह से श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं। कोई उनके लिए फूल निकाल रही है माला बनाने के लिए, कोई चंदन लगा रही है, अलग अलग तरह की सेवा गोपियां श्री कृष्ण के लिए किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु दिन भर रात भर इसी गोपियों के भाव में मग्न रहा करते थे और कभी कभी उनको पता भी नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। एक बार वो समुद्र में कूद पड़े और सोचने लगे कि ये यमुना है और यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग में बहुत सारी लीलाएं की थी, जल क्रीड़ा की थी। तो भावावेश में आकर चैतन्य महाप्रभु समुद्र में कूद पड़े थे यमुना समझकर और अकस्मात एक मच्छी पकड़ने वाले व्यक्ति ने उनको अपने जाल में पकड़ लिया। भक्त लोग सब जगह महाप्रभु को ढूंढते हुए इधर उधर जा रहे थे लेकिन अचानक ये मच्छी पकड़ने वाले व्यक्ति ने इस चैतन्य महाप्रभु को अपने जाले में पकड़कर भक्तों में वापस लौटा दिया। तो इस तरह से अंत तक अपने लीला समाप्त करने तक चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कृष्ण भक्ति का प्रदर्शन और इसका आस्वादन किया जिस उद्देश्य के लिए वो आए थे, श्रीमती राधा रानी के भाव को का आस्वादन करने के लिए वो 24 घंटे किया करते थे। और फिर 48 साल की उम्र में वो अप्रकट हुए जगन्नाथपुरी में। उन्होंने शक्ति प्रदान की अपने कई शिष्यों को, अपने कई भक्तों को और उनमें से प्रमुख हैं छह गोस्वामी जिनके नाम है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी। और इन छह गोस्वामियों को उन्होंने ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान की कि उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्र लिखे, कृष्ण भक्ति का पथ जो है वो स्पष्ट कर दिया हम सब के लिए। इसलिए छह गोस्वामियों के हम अनुयायी हैं। उनके बारे में बताया जाता है, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुवौ भारावहन तारकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। इस प्रार्थना में ये बताया जाता है कि ये छह गोस्वामी हमेशा कृष्ण कीर्तन किया करते थे और कीर्तन के साथ साथ में गान और नर्तन भी किया करते थे और इसीलिए हमेशा कृष्ण प्रेम के अमृतमय सागर में हमेशा तैरते रहते थे और उनके अंदर इतने अच्छे गुण थे, भक्त के गुण, कि धीर और अधीर दोनों प्रकार के लोग उनसे प्रेम करते थे। जो बड़े खतरनाक चोर डाकू भी हुआ करते थे वो भी इन छह गोस्वामियों के सामने आके बिल्कुल नम्र और सज्जन बन जाते। तो धीर और सज्जन लोगों की बात तो दूर ही है, ये विशेषता होती है साधुओं की। जब साधु दुष्ट लोगों के सामने भी जाते हैं तो दुष्ट लोग बड़े सज्जन और नम्र हो जाते हैं, ये कृष्ण भक्ति का प्रभाव होता है। और श्री चैतन्य कृपा भराओ भुवि भुवौ, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होने की वजह से उन्होंने सारे पृथ्वी लोक में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो हम ऐसे षड गोस्वामियों के चरण कमलों में प्रार्थना हम करते हैं, इनकी कृपा से ही हम कृष्ण भक्ति को समझ पाएंगे। और 100 साल पूर्व इसी परंपरा में आते हुए भक्ति विनोद ठाकुर जी, इन्होंने कृष्ण भक्ति के प्रचार का आंदोलन आरंभ किया। वास्तव में जो अध्यात्म ग्रंथों का वितरण चालू हुआ आधुनिक काल में, तो वे भक्ति विनोद ठाकुर से आरंभ हुआ और उनके सुपुत्र जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने 64 मठ स्थापित किए भारतवर्ष में और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कृष्ण की शुद्ध भक्ति का मार्ग सबके लिए स्पष्ट किया। और उनके शिष्य श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के वाणी को सिद्ध कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, पृथ्वी ते जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बिमोर नाम। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि संसार में जितने गांव हैं, जितने देश हैं, जितने छोटे छोटे शहर बड़े शहर हैं, सब में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम गूंजने वाले हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी सब जगह विश्व भर में घूमे और उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की और हम आज देखते हैं कि ऐसा शायद कोई देश नहीं है जहां हरे कृष्ण संस्था के भक्त कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हों, कृष्ण नाम का प्रचार नहीं कर रहे हों, गीता और भागवत के संदेश को फैला नहीं रहे हों। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। हमें सब इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए क्योंकि यही कलयुग में युग धर्म है, यही हमारे जीवन को सफल बनाने का एकमात्र मार्ग है। हमें सब एक साथ में मिलकर भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए। और इस हरि नाम संकीर्तन के आंदोलन में रहकर हमें कृष्ण नाम का आस्वादन करना चाहिए और कृष्ण भक्ति का आस्वादन करना चाहिए। भज गौरांगो कहो गौरांगो लौह गौरांगेरो नाम रे। जय जन गौरांग भजे सेहाय अमर प्राण रे। अंग भजे सेहाय अमर प्राण रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।